संता प्रकाश ग्रंथ का पेज नंबर 1174 है, 1174। इसकी 5 लाइनें आपके साथ में पढ़ी जाएंगी, इसको साथ में उच्चारण करेंगे।
देह मल इच्छा घना है रोग, देह मल इच्छा घना है रोग, जन्म मरण का देवे संयोग, जन्म मरण का देवे संयोग,
जन्म मरण का देवे संयोग, जन्म मरण का देवे संयोग,
सत साजन जुगत सत जानी, सत साजन जुगत सत जानी,
सत साजन जुगत सत जानी, सत साजन जुगत सत जानी,
देह ममता कीजे नित हानि, देह ममता कीजे नित हानि,
देह ममता कीजे नित हानि, देह ममता कीजे नित हानि,
देह भरवासा मन से छोड़े, देह भरवासा मन से छोड़े,
देह भरवासा मन से छोड़े, देह भरवासा मन से छोड़े,
एक आधार नाम चित जोड़े, एक आधार नाम चित जोड़े,
एक आधार नाम चित जोड़े, एक आधार नाम चित जोड़े,
सकल कर्म प्रभु आज्ञा में देखे, सकल कर्म प्रभु आज्ञा में देखे,
सकल कर्म प्रभु आज्ञा में देखे, सकल कर्म प्रभु आज्ञा में देखे,
लाभ हान को सम कर पेखे, लाभ हान को सम कर पेखे,
लाभ हान को सम कर पेखे, लाभ हान को सम कर पेखे,
राग द्वेष मन अगन निवारी, राग द्वेष मन अगन निवारी,
राग द्वेष मन अगन निवारी, राग द्वेष मन अगन निवारी,
तिस साजन तत् सार विचारी, तिस साजन तत् करत सार विचारी।
तिस साजन करत सार विचारी।
तिस साजन करत सार विचारी। देह मल इच्छा घना है रोग, जन्म मरण का देवे संजो। ये वाणी इच्छा को देह मल कह रही है। मल हम जानते हैं जो कुछ भी आहार ग्रहण करते हैं इस देह के अंदर डालते हैं उसका जो एक अंश है वो रस बन जाता है, उससे खून और शरीर का संचालन होता है। दूसरा उसका जो स्थूल भाग है वो मल बन जाता है, वो देह में टिक नहीं सकता, वो बेचैनी पैदा करता है, इसलिए देह का एक ऑटोमेटिक सिस्टम है मल त्याग करने का। कहते हैं देह मल इच्छा घना है रोग। यहां वाणी इच्छा को देह का मल कह रही है क्योंकि इच्छा देह के अंदर ही पैदा होती है। और मल क्यों कहा गया? मल यदि शरीर में इकट्ठा हो जाए तो आपको इतना बेचैन करता है कि जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा आपकी बेचैनी खत्म नहीं। उसी प्रकार देह के अंदर जो संसारी भाव में जो लोग जीवन जीते हैं उनके अंदर इच्छा इतना जोर मारती है कि जब तक वो पूरी ना हो जाए वो बेचैन रहते हैं। और कहते ये घना है रोग। घना रोग क्यों है? क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक इस रोग से हमारा कभी भी छुटकारा नहीं हो पाता। जैसे कोई क्रॉनिक डिजीज हो जाए किसी को, मान लिया शुगर ही हो गई, सारी जिंदगी वो बीमारी ठीक नहीं होती, प्राण लेकर ही वो बीमारी छूटती। लेकिन संसार में लोग इसको इस प्रकार से नहीं देखते और यही जो रोग है यही आपको जन्म और मरण देते। इस संसार से जब विदा होते हो आपकी देह मर जाती है तो जितने भी संस्कार हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं वो सारा स्वभाव के रूप में, कर्म फल के रूप में आप उनको साथ लेकर जाते हो और उसी के अनुसार आपकी अगली देह प्रभु तैयार करते हैं। तो ये इस जन्म में भी परेशान करती है और अगले जन्म में भी परेशान करेगी क्योंकि जिस रोग से आप इस जन्म में परेशान रहे, जिस इच्छा के रोग से, वो रोग साथ में लेकर जा रहे हो तो अगला जन्म भी आपका परेशानी में ही बीतना। तो इतनी लंबी बीमारी है लेकिन प्रभु हमको याद दिला रहे हैं वाणी के द्वारा कि देह मल इच्छा घना है रोग, जन्म मरण का देवे संजोग। तो हर जन्म हमारा इसी प्रकार का होगा जैसा इस जन्म हमने किया, देखा है, भोगा है। तो ये होता क्यों है? ऐसा रोग, ऐसा इच्छा का रोग कहां से उत्पन्न होता है? तो देह का जो विज्ञान है इसको सतमुच कहते हैं कि देह पांच तत्व से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और बाहर की प्रकृति भी पांच तत्व से बनी है। तो प्रकृति और शरीर ये अलग नहीं है, एक ही चीज है। और पांच तत्व के जानने के लिए, भोगने के लिए आपके पास पांच ज्ञान इंद्रियां हैं और पांच कर्म इंद्रियां हैं। कोई भी इच्छा आपके अंदर पैदा होती है उसको पूरी करने की इच्छा जब आपके अंदर होती है या उसको पूरी करना चाहते हो तो क्या करते हो? कर्म इंद्रियों से उसके लिए साधन जुटाते हो और ज्ञान इंद्रियों से उसका भोग करते हो। तो मन की जो डिजायर है उसने आपको कर्म में लगा दिया क्योंकि वो बेचैन कर रही है आपको। आपको पता है यदि मैं इसको पूरी कर लूंगा तो मुझे चैन मिल जाएगा। जैसा कि बालक की हालत होती है उसके बारे में ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते ही हैं इस बात एक बालक चैन से बैठा हुआ है, पेट उसका भरा हुआ है, लेकिन रोना शुरू कर देता है। माँ समझ जाती है कि या तो उसको भूख लगी है, यदि बोल सकता है, बात अपनी बता सकता है, तो वो अपनी इच्छा प्रकट कर देता है। तो माँ यदि रोना बंद करना चाहती है तो उसकी इच्छा पूरी कर देती है। यही प्रक्रिया तो जीवन जीने की है हमारी। सब लोग इसी प्रकार का जीवन जी रहे हैं। बालक है वो रो लेता है, हम क्या करते हैं, बेचैन हो लेते हैं, और फिर बेचैनी से बचने के लिए हम भी वही काम करते हैं, जो हमारी इच्छा है उसको पुरुषार्थ करके पूरी करने की कोशिश करते हैं। पूरी हो जाती है तो कुछ देर के लिए चैन मिल जाता है, लेकिन मन ऐसा ऑर्गन है जिसमें इच्छाएं, इच्छाओं की तरंग निरंतर उठती रहती हैं, एक के बाद दूसरे। उसी प्रकार जिस प्रकार सागर के किनारे खड़े हो जाओ तो एक लहर आएगी, उसके पीछे दूसरी आएगी, उसके पीछे तीसरी आएगी, जैसे कि सागर लहरों का समूह है और कुछ भी नहीं। तो उसी प्रकार मन कुछ भी नहीं है, इच्छा की तरंगे इसमें निरंतर उठती ही रहती हैं नॉन स्टॉप। यहां तक कि जब आप इस शरीर को भूल जाते हो तब भी स्वप्न के रूप में मन की वो तरंगे उठती रहती हैं, वहां भी हम कर्म करते रहते हैं और उसका फल भोगते रहते हैं। तो अब बताइए, सारा जन्म क्या इसी वास्ते मिला मुझको कि बेचैन होता रहूं? तो सबकुछ कहते हैं, याद दिला रहे हैं, देह मल इच्छा घना है रोग। मनुष्य जन्म लेकर मैंने इस अपने विज्ञान को सीखना है। जिस प्रकार देह का मल त्यागने योग्य होता है, उसी प्रकार इच्छा भी मनुष्य जन्म लेकर त्यागने योग्य होती है, पूर्ण करने योग्य नहीं होती। लेकिन सारी दुनिया ऐसे ही कर रही है तो मैं भी ये जानता हूं कि इच्छा होती है, इच्छा के कारण बेचैन हो रहा हूं, क्यों ना मैं इसको पूर्ण करूं, उससे मुझको खुशी मिलेगी। तो जो भी आपके दुख का कारण है, यदि वो कारण निवारण हो जाए तो आपको सुख मिलता है। इसीलिए हर इच्छा पूरी करके आपको सुख की अनुभूति होती है, लेकिन ये बीमारी है ये आपको नहीं पता। तो सत्पुरुष कहते हैं इसका इलाज दूसरा है। तो आगे कह रहे हैं कि वो सत साजन जुगत सत जानी, देह ममता की कीजे निधानी। जो सत साजन कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर सत बुद्धि होती है, जिस मनुष्य के अंदर ईश्वर विश्वास होता है, ईश्वर ज्ञान को जो समझता है, वो कहते हैं सत साजन जुगत सत जानी, देह ममता की कीजे निधानी। मैं तो इच्छाएं पूरी करके देह की ममता को बढ़ाता हूं और ज्यादा देह का अहंकारी हो जाता हूं। मेरे अंदर ये होश ही नहीं रहता कि देह मरती है तो मैं बच जाता हूं और फिर मेरा पुनर्जन्म हो जाता है, अर्थात मुझको नई देह मिल जाती है। इस सिद्धांत को मैं दूसरों को सुनाता भी हूं, सुनता भी हूं, जानता भी हूं, लेकिन फिर भी कभी भी इस पर विचार करने की कोशिश नहीं कि मैं वो हूं जो मर गया या मैं वो हूं जो बच गया। वास्तविकता यह है कि मैं वो हूं जो बच गया, मैं ही नहीं बचा, मेरा स्वभाव भी बच गया। जितनी इच्छाएं मेरी बाकी थी वो भी बच गई, जितने संस्कार बने थे इच्छा पूरी करके वो भी बच गए। इसीलिए मन और बुद्धि और मेरी इंद्रियां, ये सब कुछ बच जाता है और नई देह मेरी तैयार हो जाती है, उसमें फिर यही प्रक्रिया चालू हो जाती है। यदि मैंने होश का जीवन व्यतीत नहीं किया तो मानव जन्म ही मुझसे छीन लिया जाता है, पशु योनि दे दी जाती है, क्योंकि वहां पर ज्ञान की जरूरत ही कोई नहीं। यदि एक साधारण मनुष्य संसार में आकर मन की इच्छा पूरी करने के लिए जीता है, उसके लिए कमाई करता है, उसके जीने का तरीका यही है, तो फिर बताइए प्रभु क्यों उसका मनुष्य का शरीर देंगे, क्या करेगा मनुष्य शरीर? ये काम तो पशु योनि में भी कर सकता है, बल्कि मनुष्य योनि लेके ज्यादा चिंता फिक्र होगी, आगे की लंबी प्लानिंग करोगे। पशु तो प्लानिंग करनी नहीं पड़ती, उसको सारी प्रकृति रेडीमेड मिलती है, जैसा उसका स्वभाव है, जैसा उसका जीवन है, जैसी उसकी शारीरिक रचना है, उसके अनुसार प्रभु सारी व्यवस्था उसके लिए कर देते। तो मनुष्य में और पशु में केवल एक अंतर है, पशु के पास बुद्धि है। तो बुद्धि तो आप इच्छाओं की को पूरी करने के लिए इस्तेमाल करते हो, लेकिन करना क्या था आपने? इस इच्छा रूपी बीमारी से मुक्त होने के लिए मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना था। तो इसलिए कह रहे हैं कि सत साजन जुगत सत जाने, देह ममता की चीजें नित हानि। तो जो सत साजन है, जिसके अंदर सत बुद्धि बुद्धि है, वो सत युक्ति सीखता है। फिर सत युक्ति क्या है ये? वो कहते हैं तू हर समय मन के भोग की, मन की इच्छाओं की याद करता है, उसके लिए पुरुषार्थ करता है। इसको तूने रोग समझना था, वाणी के द्वारा, सत्पुरुषों के द्वारा या शास्त्रों के द्वारा, ये रोग कैसा है, क्यों है, इसका इलाज कैसे होता है, ये सारा विज्ञान तूने सीखना था। और फिर करना क्या था? तूने प्रभु की याद करनी थी, जिसको सिमरन कहते हैं। तू रात दिन संसार की याद करता है, इच्छा पूर्ति के लिए किसको याद करेगा? संसार। और अपने बारे में क्या वहम होगा कि मैं देह हूं, मुझको पता है जब ये पांच तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसमें कोई चीज चेतन है क्या? पांचों पदार्थ जड़ है। तो जड़ देह को मैं अपना स्वरूप बना लेता हूं और मन के अंदर जो इच्छाएं उठती हैं उसको अपनी आवश्यकता समझ लेता हूं कि भाई जीवन जीने का यही उद्देश्य है कि इन्हीं इच्छाओं को पूरी मैं कर, मुझको चैन मिल जाए। लेकिन महाराज कह रहे हैं प्रेमी, जैसे जैसे तुम इच्छाएं पूरी करते हो वो और गहरी हो जाती हैं और आपको तड़प आती है। सत्य ये है। इसीलिए चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे एक परिवार हो, चाहे एक देश हो, चाहे पूरा संसार हो, आप देख लीजिए जिस देश ने भी इन इच्छाओं के पीछे दौड़ लगाई कि हम अमीर हो जाएंगे और बड़ी बड़ी इच्छाएं करें, इसको विकास करके देखते हैं वो, और फिर जब देखते हैं कि क्या होता है, बुद्धि भ्रष्ट होती चली जाती है। बड़े से बड़े देश भी फिर दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं, उनकी संपत्ति भी हड़पने की कोशिश करते हैं, उनके देश में कब्जा कर लेते हैं, विश्व युद्ध हो जाते हैं। तो चाहे एक व्यक्ति है, चाहे पूरा संसार है, प्रक्रिया यही है। जैसे जैसे आप अपनी वासना पूरी करोगे, वैसे वैसे आपका जीवन धीरे धीरे अनजाने में ही पापी होता चला जाएगा, दूसरों का शोषण करने वाला बन जाएगा। अपनी जिंदगी तो बर्बाद करोगे ही, दूसरों को भी बेचैन करोगे। ये पूरी प्रकृति का राज है, ये बिल्कुल ओपन है। आप सत्विचार के द्वारा इसका चिंतन करके देख लीजिए, निर्णय यही निकलेगा। इसलिए कहते हैं कि वो कौन सी युक्ति है कि देह ममता की कीजे नित हानि। मैं देह हूं, इसको ममता कहते हैं, इसको अहंकार भी कहते हैं। देह करके जिससे भी संबंध है, जो वस्तुएं भी है मेरे पास, ये मेरी है, ये मोह और ममता भी कहते हैं। मैं देह और वस्तुएं मेरी, देह करके यही मोह ममता है। तो ये क्या होता है कि इसकी नित्य हानि करता है, अर्थात इसकी नित्य निरंतर इसमें कमी लाता है। उसको याद रहता है कि मैं जीव हूं, इस देह के अंदर मैं निवास करता हूं, मैं जानता हूं कि मेरे मन में क्या इच्छा उठ रही है, मैं जानता हूं इसको यदि पूरा किया इस इच्छा को मैंने, तो मेरी जिंदगी कहां चली जाएगी। एक व्यक्ति के अंदर शराब पीने की इच्छा होती है, भंग खाने की इच्छा होती है, या किसी का माल छीनने की इच्छा होती है, आप जानते हैं कि ये दोष है, ये जीवन को बर्बाद करेगी। लेकिन जिसके अंदर इच्छा होती है, जो उसके मोह में है, वो पाप करके भी इच्छा पूरी कर लेता, तो कहां जाता है फिर? सब जानते हैं, जेल में जाता है बेचारा। तो इच्छा पूरी करने का जो मेथड है वो ये नहीं है जो आप अपनाते। सत्पुरुष कहते हैं कि इच्छा को देखना चाहिए, ज्ञान के आधार पर या ज्ञान दृष्टि से उस इच्छा को देखना चाहिए, ये मुझे कहां ले जाएगी। तो वो उस इच्छा को दोष करके देखता है, ज्ञान दृष्टि से या ज्ञान के द्वारा, और फिर उस इच्छा को खत्म कैसे किया जाए, इसके लिए वो कोशिश करता है। जिसके लिए महाराज जी ने हमको एक मेथड दिया, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्सिमरन, ये पांच पॉइंट के रूप में उन्होंने वे ऑफ लाइफ दे दी कि ये इच्छा की निवृत्ति का साधन है, इच्छाओं की निवृत्ति का मेथड है। तो तमोगुणी इच्छाएं जो होती हैं, जो पाप करवाती हैं, उससे उठकर रजोगुणी पर आता है, रजोगुण से उठकर फिर वो सतोगुण पर आ जाता है। जो सतोगुणी मनुष्य है, उसके अंदर इच्छाएं किसी की सेवा की उठेंगे, किसी का दुख दर्द उसको दिखाई पड़ेगा, उसकी इच्छाएं ईश्वर सिमरन के लिए उठेंगे, उसकी इच्छाएं शास्त्र पढ़ने के लिए उठेंगे, उसकी इच्छाएं सिमरन करने के लिए उठती हैं, इस प्रकार से वो धीरे धीरे ईश्वर की तरफ बढ़ जाता है, संसार और शरीर के मोह से धीरे धीरे मुक्त होता रहता है। तो ये है वो कि देह ममता की कीजे निथानी। अगला क्या होता है फिर, देह भरवासा मन से छोड़े एक आधार नाम चित्त जोड़े। जब जीवन उसका साफ सुथरा हो जाता है, सादा हो जाता है, तो कहते हैं कि फिर देह भरवासा मन से छोड़े, देह का भरोसा वो मन से छोड़ने लगता है। देह तो मिट जाएगी, तेरी आज है कल नहीं रहेगी, आज स्वस्थ है कल को रोगी हो जाएगी। तो मैं देह हूं, देह जीवन के द्वारा जो संसार में जीवन व्यतीत करते हैं, तो वो जो आपका तो भरोसा है, विश्वास है मेरा जीवन सफल हो जाएगा, ये तेरा विश्वास टूटने लगता है। एक आधार नाम चित्त जोड़े, और इस आधार को छोड़कर, तो शरीर के आधार को छोड़कर नाम का आधार, प्रभु का आधार पकड़ लेता है, उसमें चित्त अर्थात अपनी बुद्धि को लगाता है। तो मैं कोशिश करके, विश्वास करके प्रभु की याद करने के लिए मैं अपने मन को उसमें लगाता हूं। पहले तो मन को लगाता था इच्छा पूर्ति के लिए, मैं अब क्या मन कहां लगाता हूं, मैं मन को ईश्वर की याद करने में लगाता हूं, ईश्वर के कार्य करने में लगाता हूं, सत्संग श्रवण में लगाता हूं, स्वाध्याय करने में लगाता हूं। तो क्या होता है कि मन की डायरेक्शन धीरे धीरे तमोगुणी रजोगुणी से सतोगुणी की तरफ बढ़ जाती है। तो इस मन के अंदर फिर सतोगुणी इच्छाएं उठने लगती हैं जो आपको ईश्वर की तरफ ले जाती है। जैसे मान लिया आप में से कुछ बड़े गंभीर स्वभाव के भी ऐसे होंगे जिनके अंदर एक तमन्ना होगी या एक एक इच्छा होगी कि मैं इस जन्म में कम से कम अपने अंदर ईश्वर का दर्शन तो कर लूं, ईश्वर प्रेम का कुछ रस तो मैं चख लूं, मेरे शरीर में उसकी प्रेजेंस है, वो मौजूद है, लेकिन मुझको उसका पता ही नहीं है, कोई अनुभव ही नहीं है। तो सिमरन के द्वारा अंदर उस अंतर्यामी का अनुभव कर लेता है, और वो अनुभव उसको कहां ले जाता है, सकल कर्म प्रभु आज्ञा में देखे लाभ हान को सम कर देखे। यदि उसने आगे बढ़ना है उस ईश्वर के दर्शन के लिए अपनी देह के अंदर ही, तो क्या क्या करना पड़ता है फिर, सकल कर्म प्रभु आज्ञा में देखे। उसके चारों तरफ जो कुछ भी लोग इकट्ठे हैं, संसार इकट्ठा है, प्रकृति इकट्ठा है, वहां निरंतर कर्म हो रहा है, उन कर्मों का इफेक्ट मेरे शरीर पर भी आ रहा है, मेरे मन मेरी बुद्धि पर भी आ रहा है। तो क्या कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, जिसका इफेक्ट मेरे ऊपर आ रहा है, जिसका असर मेरे शरीर पर पड़ रहा है, वो प्रभु आज्ञा में उसको देखना शुरू कर। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने जो कुछ भी सुख दुख भोगने हैं संसार में आकर, वो पूर्व जन्म के कर्मों के फल के रूप में उसको प्रारंभ के साथ ही, भाग्य के साथ ही मिल जाते हैं। अब मान लिया मैं ऐसी जगह पैदा हो गया जहां घर में ही मेरे दुश्मन तैयार हो गए, मैं तो दुखी रहूंगा। लेकिन जो ईश्वर भक्त है वो जानता है इस बात के लिए कि मेरे अपने लोग ही मुझको दुख दे रहे हैं, ये मेरा प्रारब्ध है, ये मेरा भाग्य है। इसलिए वो उसको ईश्वर हुक्म में देखता है, ये लीला ये रचना ईश्वर ने रची है, और ऐसे ही नहीं रच दी है, मैंने ऐसी ही गलतियां करके आया था, मैंने दूसरों को कष्ट दिया था, आज मेरे परिवार में ही मेरे ही लोग मुझको कष्ट दे रहे हैं, ये प्रभु हुक्म से हो रहा है। इसलिए वो हर घटनाक्रम को जो उसके साथ घटती है, चाहे बाहर चाहे घर में, वो उसको ईश्वर आज्ञा में या प्रभु आज्ञा में देखता है। क्यों देखता है? लाभ हान को सम कर देखे। क्यों देखता है वो? कहते लाभ हान को सम कर देखे, लाभ और हानि में वो उनको समान करके देखता है, अर्थात सुख से और दुख से दोनों से वो ऊपर उठता है, तभी तो मन अंदर ईश्वर में टिकेगा। ये तो मन जहां दुख मिलेगा मन बाहर आ जाएगा, आपके अंदर संस्कार है सुख भोगने के, याद आ जाएगी कि ये दुख जल्दी से जाए मुझको सुख मिले, लेकिन अंदर ईश्वर के साथ एक होना है तो बाहर से मन को हटाना पड़ेगा ना। तो मन की जो नेचुरल स्थिति है वो क्या हो जाती है आपकी, अंदर ईश्वर से प्रेम मन करने लगता है, मन ईश्वर के प्रेम में ईश्वर की याद में टिकने लगता है। तो इस व्यक्ति ये किसके टिकेगा? जो बाहर के सुख दुख को ईश्वर हुक्म में जानेगा कि प्रभु आपने सुख दुख भेजा है, ये मनुष्य जो दिखाई पड़ रहे हैं ये कोई नहीं है मुझको सुख देने वाले और दुख देने वाले, इनके शरीर को भी आप ही चला रहे हो, इनके लिए भी परिस्थितियां आप ही पैदा कर रहे हो। इसीलिए जिसका इतना बड़ा महाभारत लाखों लोग इकट्ठे हैं वहां पर, कृष्ण एक ही चीज समझा रहे हैं अर्जुन को, ये सब जो है अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार बंधे हुए यहाँ युद्ध करने के लिए या नाश करने के लिए करवाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये युद्ध तो हो चुका है, इसको कोई बदल नहीं सकता। अब बताइए लाखों लोग जहां इकट्ठे हैं वो प्रारब्ध से बंधे हुए इकट्ठे हुए हैं, मैं तो अकेला हूं, मैं तो अपने बारे में सोच ही सकता हूं कम से कम कि मेरे जीवन में जो अच्छे दिन आएंगे बुरे दिन आएंगे सांसारिक दृष्टि से वो प्रीफिक्स्ड है, उनमें कोई चेंज नहीं हो सकती। चेंज कहीं हो सकती है वो मेरे अंदर हो सकती है। क्या आपके विश्वास में चेंज हो सकती है, आपके स्वभाव में चेंज हो सकती है, आपकी कोशिश में चेंज हो सकती है, क्योंकि इंटरनल है। प्रारब्ध देह का बाहर का होता है, देह ने संसार में क्या काम करने हैं कैसी परिस्थितियां देह के सामने आएंगी ये प्रारब्ध है, लेकिन अंदर की जो कोशिश है वो पुरुषार्थ है। तो मैं प्रभु की चाहूं तो याद कर सकता हूं, मैं चाहूं तो संसार की भी याद कर सकता हूं, मैं चाहूं तो इच्छाओं के लिए रो सकता हूं, मैं चाहूं तो प्रभु के लिए भी रो सकता हूं। तो बताइए यदि मैं प्रभु की तरफ चला, उससे मैंने प्रेम करने की कोशिश की, उसके बारे में जानने की कोशिश की, उसके लिए पुरुषार्थ किया, तो बताइए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये पांचों विकार मेरे धीरे धीरे भस्म होने लगेंगे, और इसके लिए इसके एवज में प्रेम मेरे अंदर आएगा, दया मेरे अंदर आएगी, परोपकार मेरे अंदर आएगा, निष्कामता मेरे अंदर आएगी, प्रभु प्रेम मेरे अंदर आएगा। तो अब बताइए जीव यही है, मैं वही हूं, लेकिन मेरे मन की वृत्ति बदल गई, मन के अंदर मेरे संस्कार बदल गए, इसलिए मन के अंदर मेरी इच्छाएं भी बदल गई। जो लोग रेगुलर सत्संग में आते हैं, आश्रम में आते हैं, सेवादार भी हैं, उनके अंदर क्या इच्छा उठती है, आप सब जानते हैं क्या इच्छा होती है। तो जो भी ईश्वर मार्ग पर आगे बढ़ जाएगा वो खुद निर्णय कर सकता है कि पहले मेरे अंदर किस प्रकार की इच्छाएं उठती थी और आज मेरे अंदर किस प्रकार की इच्छाएं उठ रही है। तो इसीलिए प्रगति मनुष्य की यह है कि लाभ हानि को सम कर पेखे, लाभ और हानि उसके लिए धीरे धीरे सम होने लगती है, अर्थात उसका मनुष्य में चंचल नहीं होता। तो राग द्वेष मन अगन निवारी तिस साजन तत् सार विचारी, तो धीरे धीरे प्रगति किस रूप में होती है कि राग द्वेष मन अगन निवारी, मन के अंदर राग और द्वेष की अग्नि जलती रहती है, इसको बेचैनी कहते हैं। ये चीज चाहिए ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे अच्छी लगती है ये चीज मुझे बुरी लगती है। तो जैसे एक बालक निरंतर बेचैन रहता है माँ को, क्योंकि वो अज्ञानी है इसलिए माँ को उसकी इच्छा पूरी करनी ही पड़ती है यदि उसका रोना बंद कराना है, तो उसी प्रकार मैं भी परेशान होता रहता हूं यदि मैं संसार में संसारी तरीके से जीता हूं। तो राग द्वेष की ये मन में अग्नि जल रही है, अग्नि किस रूप में कि मन आपका हमेशा बेचैन रहता है, कभी चैन नहीं आता इसके अंदर, चाहे आप घर में बैठे हैं चाहे आप संसार में हैं, आपकी मानसिक बेचैनी आपको निरंतर परेशान रखती है। तो ये अग्नि जो है इसका निवारण हो जाता है, इस अग्नि से आपको छुटकारा मिल जाता है। आपका क्या होता है तिस साजन तत् सार विचारी, वो जो जीव है वो जो सतोगुणी जीव है या यूं कहिए कि ईश्वर मार्ग पर चलने वाला जीव है, वो अंदर उस प्रभु के तत्व का सार जानने लगता है, उसका अनुभव करने लगता है और उसी में उसकी बुद्धि स्थित होने लगती है। तो जब बुद्धि उस अंतर्यामी ईश्वर में स्थित होती है उस समय पता लगता है इस मन के अंदर सारी बेचैनी धुल गई है, सारी बेचैनी साफ हो गई है, अब ये मन अंदर ईश्वर प्रेम का रस दे रहा है। अब बताइए संसार की इच्छाएं पूरी कर करके तो ये मन रोगी हो जाता है, इसकी चंचलता बढ़ जाती है और यहाँ इस जन्म में भी मुझको रोगी रखता है और अगला जन्म भी उससे बुरी हालत में मिलता है, क्योंकि मैंने मन का जो विकास किया है वो नेगेटिव साइड में किया, चंचलता बढ़ाने का काम मैंने किया, इसको मैं डेवलपमेंट करके देखता रहा लेकिन वास्तव में मेरे जीवन का ये पतन था। इसीलिए याद रखिए जिस मनुष्य ने भी संसार में आकर पैसा बढ़ाया है, संपत्ति बढ़ाई है, भोग विलास बढ़ाए हैं, उसने अपने जीवन का महान पतन किया है, क्योंकि वो घोर रजोगुणी होकर संसार से जाएगा, अगला जन्म उसको एक दिन भी चैन से व्यतीत करने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने चैन की कमाई करनी थी, सत की कमाई करनी थी, ईश्वर भक्ति की कमाई करनी थी और सत विचार मैंने बुद्धि में इकट्ठे करने थे ताकि एक दिन जब मेरे मौत का आता उस दिन मैं सतोगुणी स्थिति को लेकर इस संसार से विदा होता। तो वो सतोगुणी स्थिति मेरी मन बुद्धि की बचपन से ही मुझको मिलती और बचपन से ही मिलती तो मेरे अंदर सेवा भाव होता, शांत स्वभाव का मैं संसार में आता और ईश्वर भक्ति में मेरा मन लगता और वैसा ही वातावरण प्रभु मुझको देते, वैसा ही गुरु भी मुझको देते। तो बताइए कि मेरा जन्म कहाँ से स्टार्ट होता, कि बचपन से ही मैं मेरी बुद्धि होश में होती, ईश्वर भक्ति करता, लोगों की सेवा करता और प्रेम से अपना जीवन व्यतीत करके प्रभु दर्शन करके संसार से विदा। इसीलिए मनुष्य जन्म ईश्वर भक्ति के लिए मिला, वासना को कम करने के लिए मिला। इसलिए ये पांच नियम मैंने जीवन में धारण करने थे। तो इसीलिए यदि जो कुछ भी गलती हुई है उस गलती को याद करने के बजाय मैं सतमार्ग को याद रखूं, इन पांच नियमों को याद रखूं और इसके साथ जीवन जीने की कोशिश करूं, तब जाकर मेरी मानसिक बेचैनी दूर होगी और ईश्वर दर्शन प्राप्त होगा। ओम ब्रह्म सत्य सर्व।